वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः भक्त्या विहीनाय पराधनं क्षिप्ताश्च कामावितरं नमन्ते कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा कल हमने माधुर्य कादम्बिनी से ये संक्षेप में बतलाया था कि भगवान सच्चिदानंद सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उन पर किसी के अंकुश की अंकुश संभव नहीं है। उसी प्रकार से उनकी संबित और ह्लादिनी की वृत्ति भक्ति भी परम स्वतंत्र परम स्वतंत्र है। बैठो बैठो, घर जाना है तो जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो बरसात हो रही है, जल्दी से निकल जाओ। कुछ खाए पीती है नहीं?
हवाज परिक्रमा कर, मैं थोड़ा सा बहुत खाया।
पिताजी को कह देना हमसे भेंट कर दिया, जाओ। अभी परिक्रमा किया?
हो गई।
ठीक है, जाओ।
पूरी करते आई थी आपके दर्शन के लिए।
बहुत
दर्शन की आगे दी वो है, दर्शन की आगे दी वो
की
जाना थी। खूब जोर हवा से खोला जरा, बंद हो चुना
की कर। सब प्रकाश तत्व है भक्ति, उस पर किसी का अंकुश नहीं होता है। दुराचारी के प्रति भी कृपा करके उसके हृदय में आविर्भूत हो सकती है। चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बताया, यदि कहो या ऐसा देखा जाता है, महानुभाव लोग भी कहते हैं भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा से ही भक्ति होती है। कहते हैं कि इसमें कुछ असुविधा है ऐसा मानने में, जब भक्ति स्वतंत्र है तो भगवान की कृपा से भक्ति होती है ऐसा मानो तो उसमें कुछ दोष स्पर्श करता है। जब वो दोष क्या है, भगवान किसी पर कृपा करते हैं और किसी पर नहीं कृपा करते हैं, वो तो समदर्शी हैं, तो क्यों ऐसा करते हैं? भगवान के लिए ऐसा करना उचित नहीं, जो किसी पर कृपा करेंगे और किसी पर कृपा नहीं करेंगे। यद्यपि असुरों को मारते हैं, भक्तों का पालन करते हैं, ऐसा पक्षपात ठीक है, यही वात्सल्य गुण है जो उनके समस्त गुणों का चक्रवर्ती है। जितने भी भगवान के गुण हैं, उन गुणों का चक्रवर्ती यही गुण है, वात्सल्य गुण। तो भी भगवान की कृपा में किसी पर कृपा करेंगे या किसी पर नहीं कृपा करेंगे, उनको समदर्शी हैं, इसलिए उनकी कृपा को भक्ति का कारण नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, यदि भक्तों की कृपा कहे तो उत्तम जो महाभागवत होते हैं भगवान के सब गुण उनमें होते हैं। वो कृपा कर सकते हैं किंतु फिर वही इनके बात में इनके संबंध में भी वही बात लागू होगी। वो उनके ऊपर में कृपा करते हैं, उनके ऊपर में कृपा करते हैं, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। समदर्शी हैं, सब पर कृपा करें, नहीं तो उसका भी कारण ढूंढना पड़ेगा ये क्यों नहीं किया। और इस तरह से करते 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 अंत तक पहुंचने पर भी इसकी मीमांसा नहीं हो सकेगी। इसलिए भगवान की कृपा या भक्तों की कृपा भी उस रूप में नहीं मानी जा सकती। उत्तम जो भागवत है महाभागवत है, किंतु शास्त्र में ऐसा लिखा है प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा जो करोति सो मध्यम। मध्यम अधिकारी जो होते हैं उनका लक्षण ही है कि वो भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति मैत्री भाव। उसमें भी मैत्री तीन प्रकार की, उत्तम वैष्णव के प्रति आदर युक्त, श्रद्धा युक्त, परस्पर सम कैटेगरी के रहने वाले लोगों पर समान मित्रता का भाव, और अपने से थोड़े से जो भी नीचे हैं उन पर वैसे ही उनके प्रति संबंध मैत्री भाव रहता है। मैत्री भी तीन प्रकार की। और जो अतत्वज्ञ हैं, तत्व नहीं जानने वाले हैं, विशेष करके मायावादी इत्यादि दोषों से रहित, स्त्री संग आदि इत्यादि से रहित, विशेष करके मायावाद दोष से रहित, ऐसे अतत्वज्ञ व्यक्ति, मूर्ख मत समझो, अतत्वज्ञ व्यक्ति जो तत्वों को नहीं जानते हैं उनके प्रति उनकी कृपा होती है। और जो भगवत बहिर्मुख भक्त बहिर्मुख हैं उनको प्रति उपेक्षा होती है। इसलिए ऐसा यदि मध्यम भक्त है अधिकार का तो गुरु का कार्य कर सकता है और उसको दीक्षा शिक्षा भी दे सकता है। और यदि कोई इस सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न कर ले तो उनके कृपा से भक्ति होती है, ये ठीक। और इसका ऐसा मानने से कहीं भी कोई असमंजस्य नहीं है, कोई भी असमंजस्य नहीं है। इसको संक्षेप में हमने कुछ और बतलाया था, कुछ और भी ये बतला रहे हैं। भक्ति करने के लिए, भक्ति को साधन का अनुष्ठान करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए भाई 10 प्रकार के अपराधों से बचना बहुत आवश्यक है। कहीं भी थोड़ी सी गलती और शिथिलता न हो इस विषय में 10 प्रकार के। इसके पहले बीड़ विकल्पा इत्यादि, उत्साहमयी घंतरला इत्यादि का बतलाया, इसके बाद में इसको बतला रहे हैं जिसमें अनिश्चिता भक्ति का, ये अनिश्चिता भक्ति के अंतर्गत है। तो जो साधक निष्कपट होगा और उसको कृष्ण भक्ति की जरूरत होगी तो इनके शास्त्रों के वचनों का प्रतिपालन करना आवश्यक है। इसलिए नमापराध बहुत भयंकर होता है। अनजान में यदि होता है तो ये पाप है। अनिश्चितता में ये विचार कर रहे हैं, निश्चितता का मैं ये प्रश्न नहीं उठेगा, नहीं होगा। उसमें दूसरे थोड़े से कुछ अनर्थ होते हैं, पीछे बदलाए हैं। यहाँ तक कि निष्ठा रुचि तक भी कुछ अनर्थ के गंध रह जाते हैं, आसक्ति तक भी रह जाते हैं। तो हाँ, क्या बतला रहा था, तो ये भयंकर है, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। विशेष करके सबसे पहले वर्णन किया साधु निंदा, बहुत व्यापक है और खूब सावधानी रहने की जरूरत है। कोई कह सकता है ऐसा, एक आदमी लंपट है, चोर है, दुराचारी है, भजन भी करता है, तिलक माला धारण कर रखा है, सदगुरु से दीक्षा भी ले ली है, किंतु दुराचारी है, तो ऐसे लोगों की यदि निंदा हम सच सच कहते हैं तो इसमें क्या दोष है, यह अपराध नहीं होना चाहिए। किंतु चक्रवर्ती ठाकुर जी ने प्रमाण शास्त्रों से लेकर के यह स्थिर किया है कि नहीं, ऐसे लोगों की भी निंदा मत करो, और अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव सब मंतव्य सम्य हो बसते। दुराचारी है, कपटी धूर्त है, ये बात ठीक है, किंतु अभी भजन करना छोड़ा नहीं, और विशेष करके किसी दूसरे देवता देवी का भजन नहीं करता, किसी भी दूसरे देवता, और कृष्ण की का भजन करता है कृष्ण की ओर प्रसन्न करने के लिए ही, और किसी कारण से नहीं, तो उसको साधु ही मानो, भले उसका संग मत करो, निंदा मत करो, संग मत करो, किंतु मन ही मन में निंदनीय मत समझो, क्योंकि अभी भी दूसरे देवताओं की पूजा पाठ इत्यादि न करके नाम संख्या पूर्व करता है, और कृष्ण की सेवा इसलिए करता है कि कृष्ण प्रसन्न हो, इसलिए भक्ति अनन्य है। शीघ्र ही साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्था हो सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा ही मान। अधिक से अधिक तुम यही कर सकते हो कि उसके उसका संग मत करो, किंतु निंदा इत्यादि मत करो, जानते हुए भी। और एक बात बतला रहे हैं, साधु हैं, यदि प्रकृत साधु हैं, सब समय भगवान का भजन करते हैं, तो उनमें साधुता का गुण होना चाहिए। यदि मान लिया कि हमने एक महत्पुरुष के चरणों में हमने अपराध किया, तो वो यदि हैं तो कृपालु अकृतदो बदान्य सूची मृदु अकिंचन इत्यादि जो 26 गुण हैं ये उनमें होने चाहिए, तो प्रशंसा उनकी करो या निंदा करो, वो कुछ भी इसे मतलब नहीं रखते, उस पर ध्यान नहीं देते, उन पर कृपा ही करते हैं। इसलिए यदि हमने निंदा किया तो वो लेंगे नहीं, अरे भैया खूब सावधान रहो, वो तो नहीं लेंगे, किंतु उनकी चरण धूलि उनको क्षमा नहीं करेगी, उसको निस्तेज कर देगी, भजन का प्रभाव है जो भजन करते हैं वो भी भजन नहीं करने देगी, उनकी चरण धूलि कभी भी नहीं क्षमा करेगी। इसके बहुत से उदाहरण दिए हैं। हे प्रिय उद्धव, मेरा भक्त कृपालु होता है, समस्त प्राणियों में अकृत दो होता है, किसी का दो आचरण नहीं करता है, जैसे महाराज युधिष्ठिर इत्यादि दो आचरण करने पर भी दुर्योधन के प्रति इन्होंने कुछ द्रोहाचरण नहीं किया। सुख दुख मान अपमान आदि को भी सहने वाला होता है। भगवान ही उसके जीवन का सार परम लक्ष्य होता है। उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना नहीं होती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। अनेक इस प्रकार से साधुओं के लक्षण बनाए गए। यदि साधु का निंदा करने वाला इस प्रकार के लक्षणों को सुनकर के मन ही मन में सोचने लगे, माने इनके प्रति अपराध हो गया है, गुरु हो वैष्णव हो कोई महाभागवत हो, माने खूब प्रयत्न किया किंतु फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, तो ये कैसे साधु? दस बार इनके चरणों में माथा नवाया, क्षमा मांगा और तभी ये कैसे वैष्णव हैं? साधु तो होते हैं कृपालु, किसी से द्रोह नहीं करते। इनका कोपी शांत होने नहीं होने जा रहा है, अतः ये साधु कैसे हुए? यदि कोई सोचे, इसलिए इनकी निंदा करने से, मैं सच ही बोल रहा हूं, इसमें कोई अपराध हमारा नहीं है। तो देखो अपराध तो उपयुक्त तो लक्षण वाले सूचि अकिंचन कृष्ण के शरण इन गुणों से विभूषित हो ऐसे महापुरुषों के प्रति अपराध होता है। जो सचमुच में ऐसा है, बाहरी दिखावा कर रहा है, उसे क्या होगा? उसे अपराध नहीं होगा। तो कहते हैं ऐसा कभी मत सोचो, भगवान का भजन करने वाले को ऐसा मत सोचो। सतान निंदा का अर्थ ही है साधु निंदा। साधु शब्द का अर्थ है क्या? भगवत भक्त। बड़े स्पष्ट शब्दों में भगवान ने अपने मुख से साधुओं के लक्षण करते हुए कहा है, साधुनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां। साधु वही है यथार्थ में। जिसका जिसने अपने को परिपूर्णतम से रूप से भगवान को समर्पित कर दिया है। गीता में भी भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य, जो अनन्य भाव से भगवान के भजन में लगा है उसे साधु मानो। विरक्त सन्यासी या रंगे कपड़े को धारण करने वाला व्यक्ति साधु नहीं कहा जा सकता है। गृहस्थ एवं जगत में वर्णाश्रम के आचारों को पालन करने वाला व्यक्ति भी साधु है, यदि अनन्य भाव से भगवान का भक्त है। उसके निंदा का नाम ही है सतनिंदा। इसके लिए करें कि यदि अपराधकारी व्यक्ति उस साधु पुरुष को तो पहले बतलाया विफल होने पर भी और वो क्षमा नहीं करते, कोप नहीं करते, दूर नहीं करते, तो उसकी साधुता पर संशय मत करो भाई, मत करो। बार बार प्रणाम करने पर भी, क्षमा मांगने पर भी यदि क्षमा नहीं करते, उनके साधुता में संशय मत करो। किसी प्रबल अपराध साधु पुरुष का प्रसन्न होना न होना, अपराधी को क्षमा करना या न करना, उसमें शंका मत करो जो वो साधु नहीं है। अनन्य भाव से भजन करते हैं कि नहीं, ये देखो, ये देखो। क्योंकि भगवान ने कहा है, समस्त आचार सहीन, षठ बुद्धि, संस्कारहीन, नीच व्यक्ति, जगत को वंचना करने वाले, दुराचारी ही नहीं सुदुराचारी व्यक्ति भी, यदि वो भगवत भजन में लगा हुआ है, उससे साधु ही मान। फिर कहते हैं यदि कोई महाभागवत पुरुष अपराधी के प्रति महा अपराध हो जाने पर भी क्रोधित नहीं होते हैं, वो महापुरुष। तो भी अपराध करने वाले व्यक्ति को अपना संशोधन करने के लिए उसे प्रमाण प्रणाम, उसे क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, और नहीं तो महापुरुषों के चरण की रज उसके तेज को निरस्त कर देती है, भजन के भावों को नष्ट कर देती है। ऐसी निंदा दुष्टों के लिए ही शोभनीय है, सज्जनों के लिए, भजन करने वालों के लिए नहीं है। कहते हैं कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है, भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा भी निरंकुश होती है। यदि कोई उनकी निंदा, उनका द्रोहाचरण करता है, तो चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा है, अपराध लेने के बदले उसको भक्ति दे देते हैं, कृपा करते हैं। ऐसे वो लोग महापुरुष लोग हुआ करते हैं। और उसके लिए तीन उदाहरण दिए। पहला उदाहरण दिया है सिंधु सौबीर देश के राजा रघुवर्ण। किसी समय वो कपिलदेव के आश्रम में या कहीं जा रहे थे, चार पालकी के कहार लगे हुए थे और बीच में उनका एक कहार बीमार पड़ गया। व्यवस्थापक ने देखा एक बीमार पड़ गया, खोज खाज करके हिष्ट पुष्ट इनको देखा, जड़ भरत को, और पकड़ करके लगा दिया। वे नीचे चींटियों को देख करके चल रहे थे या कीड़े मकोड़ों का, जब पैरों से दबने जाए, इसलिए पालकी का पैर और कहारों, तीन कहारों से मिल नहीं रहा था, इसलिए पालकी हिल और उनको झटका लगने लग गया। उस समय उन्होंने कहा, बहुत दुर्बल हो ना, बहुत दुर्बल हो, चल नहीं सकते हो, जरा होश संभाल करके चलो। फिर नहीं उन्होंने सुना, चलते रहे किंतु वैसी तरह से, अरे क्यों नहीं ठीक से चलते। कारों ने कहा, जैसे ये पैर में मिला करके नहीं चल रहा, इसलिए हिल रही, हम लोगों का दोष नहीं। उन्होंने कहा, जे तुम देखने में हिस्ट पुष्ट, क्या तुम भार नहीं ढो सकते, और कुछ ताना मारा उनके संबंध में, अपराध किया। फिर इस पर भी कुछ नहीं बोले, तो फिर और कुछ कहने के बाद में कुछ मुस्कुरा दिए, हंस दिए, और हंस करके बोले, यदि कोई चीज भार है तो ढोने के लिए ही है, उसे ढोया जा रहा है, और मैं राजा हूं, जंप की भांति मैं भी दंड दूंगा तुम्हें, ये आपने जो कहा, तो यदि दंड है तो दंड देने के लिए है, तो आप दंड दे सकते हैं, किंतु आत्मा को कैसे दंड देंगे, न तो स्थूल है, न तो मोटा है, न पतला है, न दुबला है, यूं ही इस प्रकार से कहा, कूद करके नीचे आ गए, उनके चरणों में सिर नवाया, आप कौन हैं इस मलिन वेश में, आप साधारण तो नहीं है, या कपिल हैं, या कभी हभी, या कौन हैं आप। तो हंस करके बोले, मैं आपके वंश का पहला भरत महाराज हूं। सुनते ही श्रद्धा आई और चरणों में गिर गए, शंकाएं की बहुत सी, और सब शंकाओं का निराकरण कर दिया। और उनको फिर ऐसा ज्ञान तत्व ज्ञान दिया जो भगवान के भजन में लग गए। किया तो अपराध, किंतु कैसी निरंकुश कृपा है उनकी जो इस प्रकार से प्रेम दिया। दूसरा उदाहरण दिया नित्यानंद प्रभु का, हरिदास का। महाप्रभु जी ने कहा जाओ नाम की भिक्षा करो। सबसे पहले वो युग जान करके जगाई बधाई के पास में गए और लोगों के मना करने पर भी नित्यानंद प्रभु जी उन्हीं के पास में गए। पहले दिन तो किसी प्रकार से दौड़ करके भाग करके आ गए, दूसरे दिन फिर पहुंचे और मदिरा की जा कलश था, कलश के टुकड़े से मारा, रक्त गिरने लगा। महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु आए, चक्र 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 हाथों में आ गया। नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु से निवेदन किया इस जन्म में ये नहीं करना है, अपराधियों का भी चित्त शोधन करना है। महाप्रभु जी के कहने, नित्यानंद कहने से महाप्रभु जी ने आलिंगन किया माधाई को, क्योंकि इसने उसको रोका था मारो मत, और साथ ही साथ में कृष्ण कृष्ण कहते प्रेम में भी दो रोक। फिर दूसरे को महाप्रभु जी ने कहा जे जाओ नित्यानंद क्षमा करेंगे तब होगा, फिर उसको भी क्षमा कर दिया। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को भी ये गुरु तत्व है, मारने पर भी क्षमा कर दिया। सबीर का एक और भी उदाहरण दिया है जी गोस्वामी ने कि ये देवताओं की मदद करने के लिए युद्ध में गए और देवताओं की तरफ से होकर के असुरों को परास्त किया और फिर वहां से पृथ्वी लोक में आकर भजन कर रहे थे पाताल लोक में, एकदम किसी से बातचीत न करके एकांत में पाताल लोक में। और उस समय में दैत्य ने देखा जैसे वो तो वहां गए हैं, बस बृहस्पति अपने गुरु से कुछ पूछा और पूछ करके परामानुसार आ करके और असुर लोग इन पर आक्रमण किया, जान से मारने की चेष्टा करने लगे, किंतु भक्ति के प्रभाव से कुछ न कर सके। फिर उन्होंने उसी समय में प्रार्थना की, हे प्रभु इन पर कृपा कीजिए, इनको भक्ति हो, और भगवान की कृपा से उन पर भक्ति हुई। इसका भी उदाहरण उन्होंने दिया है। इसलिए भक्तों की और गुरु की कृपा भी निरंकुश होती है, कभी दंड भी दे सकते हैं और दंड दे करके सुधार करेंगे, और कभी इस प्रकार से कृपा करके उसके चित्त वृत्ति का शोधन करके भगवान के भजन में उसको लगा देते हैं। ट्रांसलेशन कौन करेगा? संक्षेप में कोई कर दे, तुम कर दो ऐसे ही थोड़ा सा, हो कैन डू, तुम करो, करो बोलो, संक्षेप में ही बोलना।